दौला धौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर दो ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं जौदरसेननाहो जेन महाकम्मपयडि पाहुडसेलो बुद्धिशिरेण धरियो समप्यो पुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागर्म ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें ये द्वितीय खंड शुरू हुआ है और उसका नाम है खुद्दा बंध। ये सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 14 पर हम आ गए हैं। देखो यहाँ बात ये बंधकों की चल रही है। बंधक यानी कर्म का बंध करने वाले जीव, उसको यहाँ बंधक कहा है। अब जब बंधक कोई भी नया विषय होता है तो उसमें हम निक्षेप लगाते हैं। ये व्यवहार के लिए वस्तु में जो ज्ञेय पदार्थ है उसमें कुछ बातें हम निक्षेप द्वारा उसको बताते हैं या उसमें डालना है ना, जैसे नाम रखना, किसी अन्य चीज में अन्य वस्तु की कल्पना करके स्थापना करना, इसको नाम निक्षेप स्थापना निक्षेप कहते हैं। द्रव्य निक्षेप में द्रव्य तो वही है परंतु उसकी भूत और भावी की पर्याय की अपेक्षा भी उस द्रव्य को हम वो नाम देते हैं। इसलिए द्रव्य निक्षेप में पहले आगम और नो आगम दो भेद किए थे। यहाँ बंधक में आगम द्रव्य बंधक और नो आगम द्रव्य बंधक कहेंगे। कल की बात रिविजन कर रहे हैं। आगम द्रव्य बंधक में बंधक संबंधी जो हमारे प्राभूत है, आगम है, उसको जानने वाला जीव उसका उपयोग उसमें नहीं है, अन्यत्र है और वर्तमान में, तब उस जीव को ही हम क्या कहेंगे, आगम द्रव्य बंधक। नो आगम द्रव्य बंधक किसको कहेंगे, यानी वो निक्षेप किस पर लगाएंगे, तो नहीं जानने वाले को। तो नहीं जानने वाला क्या हो सकता है, एक तो जीव का शरीर हो सकता है, ज्ञायक शरीर, फिर उसके भूत भविष्य भावी या भावी या भव्य जो जीव है, जीव अभी नहीं जान रहा है, भविष्य में जानेगा, उस जीव को भी कहेंगे नो आगम द्रव्य बंधक। तीसरी बात, ना जीव है और ना ही शरीर है, तो कर्म और नो कर्म लेना उसमें। तद व्यतिरिक्त में नो कर्म बंधक में यानी हाथी को बांधने वाले, इस लकड़ी को बांधने वाले, इसे उसमें भेद करके बताए। और कर्म के बंधक जो है उसको क्या कहा हमने, नो आगम तद व्यतिरिक्त, उसका कर्म नाम का भेद है, कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य बंधक, यानी कर्म को बांधने वाले, ऐसा इसका अर्थ होता है। उसके बाद यानी वो तो द्रव्य नहीं, वो तो द्रव्य बंधक में तो भूत भविष्य के भी पर्याय लेते हैं। भाव में क्या लेना, आगम भाव बंधक, अनु आगम भाव बंधक। आगम भाव बंधक में बंधक संबंधी प्रावृत को जानने वाला, वर्तमान में उसके में उपयोग वाला जीव लेना, वो भाव बंधक। और नो आगम में, वहां नो आगम में क्रोध मान माया लोभ परिणत रूप जो जीव है बंध करने वाला, उसको लेना है। तो इन सब में यहाँ किसकी बात चलेगी, तो एक कर्म बंधकों का यहाँ अधिकार, ये बात हमने देखी थी। कर्म को बांधने वाले कौन है, तो जीव है, क्योंकि कर्म को जीव बांध रहे है, तो उसको हमें मार्गणाओं में देखना है। तो हमने 14 मार्गणाओं के नाम देखे थे, याद है कि भूल गए, थोड़ा थोड़ा याद है। देखो ऐसा याद करना, तीन तीन की बात, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणा है। ये मार्गणाओं के नाम कैसे तैयार हुए उसकी निरुक्ति भी बताई, इसको निरुक्ति कहते हैं। यानी वो शब्द कैसा तैयार हुआ, उसका अर्थ क्या है शब्द का, उसको निरुक्ति कहते हैं। वो सब उसके नाम और उसकी निरुक्ति बताई। अब उसके बाद एक एक मार्गणा लेकर उसमें बंधक जीव है ये बात सिद्ध कर रहे। गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति है, तिर्यंज गति है, मनुष्य गति है, देव गति है। तो उसमें नरक गति में नारकी जीव बंधक है, तिर्यंज गति में तिर्यंज जीव बंधक है, इस तरह से हर गति में उन्होंने सिद्ध किया। परंतु मनुष्य गति में बंधक भी है और अबंधक भी है ऐसा लिया, क्योंकि मनुष्य गति वाले जो है सयोगी केवली तक बंधक है, अयोगी अबंधक है, और सिद्ध गति वाले सिद्ध सारे अबंधक है। मैंने यहाँ संसारी जीवों पर भी घटित किया और हर बार सिद्धों को भी उसके साथ अप्लाई करके बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि बंधक के कारण कौन से हैं, तो उसमें बताया कि मिथ्यात्व, असंयम, यहाँ असंयम शब्द आया, अविरति भी कह सकते, कषाय और योग, प्रमाद है वो कषाय में ही गर्भित कर लिया है उन्होंने, ये आश्रय बंधक के कारण बताए हैं। और मोक्ष के कारण इसके विरुद्ध सम्यक दर्शन, संयम, अकषाय और अयोग, यानी वो कर्म के निरोधक भाव भी कहा उसको। पांच भावों में से जो बताया था कि औदयिक भाव है, सारे औदयिक भाव नहीं, मिथ्यात्व अन्य जो कुछ औदयिक भाव है वो बंधक के कारण है, उसकी बात कल हुई थी अपनी। फिर उन्होंने एक एक गुणस्थान में कौन से भाव से, यानी कौन से कर्म के उदय में कौन कौन से या किस कारण से क्या क्या बंध हो रहा है उसकी बात बताई। यानी जीव यहाँ मिथ्यात्व करता है तो मिथ्यात्व के कारण बंधने वाली 16 प्रकृतियां जो पहले गुणस्थान में ही बनती है, अनंतानुबंधी कषाय के कारण बंधने वाली जो है उसका उदय कारण कहते हैं, इन्हें कर्मों के उदय को बताते, उदय कहो या जीव के परिणाम को, बात एक ही है, इसलिए वहां अनंतानुबंधी के उदय को कारण कहा। तो उसमें 25 प्रकृतियां हमने दूसरे गुणस्थान की देखी थी। तीसरे गुणस्थान में कोई वहां बंध रुकता नहीं है। चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियां देखी थी हमने। हाँ, ये तो इन जनरल सबको मिलकर ये कथन होता है। हाँ, हर एक मार्गणा के लिए उसका कथन जुदा जुदा होगा। पांचवें गुणस्थान में हमने 4 प्रकृतियां देखी, छठवें में 6 प्रकृतियां, सातवें में 1 देवायु, आठवें के पहले 7 भाग करना, पहले भाग में निद्रा और प्रचला बनता है, वो आगे नहीं बनता, छठे भाग में बंध विच्छित्ति होने वाली 30 प्रकृतियां हैं, और सातवें भाग में हास्यरति भय जुगुप्सा, इन नौवें में 1 पुरुष वेद और 4 कषाय, 5 प्रकृतियां, दसवें में ज्ञानावरण की है, दर्शनावरण की, अंतराय और यशस की, और उच्च गोत्र, यानी वो 16 प्रकृतियां होती है वहां पर। फिर 11वें 12वें में विच्छित्ति नहीं है, 13वें में सातावेदनीय बंध रहा था, वो बंधना रुक जाती है। इस तरह से हमने उसकी कहां कौन सी प्रकृतियां बनती है, किस कारण बनती है, उसकी यहाँ चर्चा की थी। यानी ये सारे बंध के कारण है, इस तरह से उसका यहाँ विस्तार से वर्णन किया था। उसके बाद उन्होंने गुणश्रेणी निर्जरा वाले जो 10 स्थान है उसकी भी चर्चा की थी। अब यहां तक हम आए हैं 14 पृष्ठ पर। यहां ये बात बताई थी वहां पर कि पारिणामिक भाव जो है वो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। यहां तक अपने पढ़ना हो गया था। अब पेज नंबर 14 नया पैराग्राफ है ना, वहां से नहीं, पर्याय हो, पर्याय तो जीव का स्वभाव है, परिणामित पारिणामिक भाव स्वभाव है, तो स्वभाव से बंध होगा क्या, नहीं होगा, ख्याल में है। बंध क्यों हो रहा है, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योग, यही बंध के कारण है। अब यहां से पढ़ते हम, इस कर्म के क्षय से सिद्धों के यह गुण उत्पन्न हुआ है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ये गाथा यहाँ प्ररूपित की जाती है। क्या कहना चाहते हैं, सिद्धों के कितने कर्म है अभी सत्ता में, एक भी नहीं है, तो 8 कर्मों का क्षय हो गया, तो कौन से कर्मों के क्षय से कौन सा गुण उत्पन्न हुआ उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। सिद्धों के गुण बताए जाते हैं उसकी बात यहाँ पर। एक एक गाथा पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे। ऊपर 4 नंबर की गाथा है, दव गुण पज्जय जय जस्सुदयेन येन जानदे जीवो तस्सखयेन सोच्य जानदि सौवं तयं जुगवम्। जिस ज्ञानावर, नीचे उसका अर्थ देखते हैं, जिस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से, पेज नंबर 14, जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं जानता, वो पुराने में देखता है उसको जानता करो, पुराने पुस्तकों में, उसमें करेक्शन है क्या? देखो पहली लाइन तो बराबर है, जिस ज्ञानावरणी कर्म के उदय से क्या हो रहा है, जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं जानता है, चाहिए वो देखता है के बदले जानता है, आगे भी है, उसी ज्ञानावरणीय कर्म के, वहां दर्शनावरणी हुआ है, वहां ज्ञानावरणीय करना आपके उसमें होगा करेक्शन। अरे करके भेजा था उनको, चार नंबर में देख रहे के दो में, पांच में देख रहे, चौथे श्लोक। हाँ देखो, जिस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं जानता है, चाहिए उसी ज्ञानावरणीय कर्म के, ज्ञानावरणी किया से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ जानने लगता है, लगाता नहीं, लगता और देखने के बदले जानने करा। क्योंकि दर्शनावरण की बात अलग से बताई उन्होंने बाद में, करेक्शन किया। हाँ अब आगे की गाथा पढ़ते हैं, पांच नंबर की, दव गुण पज्जये जे जस्सुदयेन येन पस्सदे जीवो तस्सखयेन सोच्य पस्सदि सौवं तयं जुगवम्। जिस दर्शनावनी कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं देखता है, वहां देखता है ना, वो नहीं देखता करना, न पस्सदे है ना, नहीं देखता, उसी दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से वही जीव उन सभी, सभी बराबर करो, तीनों को एक साथ देखने लगता है। जैसे ज्ञानावरण आदि का उदय चल रहा है छद्मस्थों को, तो द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ नहीं जान रहा था, दर्शनावरण का भी उदय से वो भले कौन सा भी हो तो उसको नहीं देखता था, अब दोनों के क्षय से जानने भी लगना सबको युगपत की बात है, युगपत जानने लगता है, युगपत देखने लगता है, एक साथ सभी को। अब छह नंबर को पढ़ेंगे, जस्सोदयेन जीवो सुहं व दुःखं व दुविहमणु अहवी तस्सोदयखयेन दु जायदि अपत्थणन्त सुहो। जिस वेदनीय कर्म के उदय से जीव सुख और दुख इस दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करता है, और ये भी कैसा है वो तो, इंद्रिय सुख कहो, बाह्य सुख कहो, उस कर्म के उदय के क्षय से आत्मोत्थ अनंत सुख उत्पन्न होता है। आप कहेंगे केवली भगवान को भी है ना अनंत सुख, उसके तो वेदनी का उदय है, पर उनके जो वेदनी के उदय वाला सुख दुख नहीं है, वहां पर आत्मा वाला है, और उसका भी क्षय होने पर जिसको कहते हैं अव्याबाध अनंत सुख होता है। सात नंबर, मिच्छत्त कसाय संजमे ही जस्सोदयेन परिणमहि जीवो तस्सेवखया तव्यवरी दे गुणे लहई। जिस मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व कषाय और असंयम रूप से परिणमन करता है, उसी मोहनीय कर्म के क्षय से इनके विपरीत गुणों को प्राप्त करता है। इनके विपरीत क्या है, मिथ्यात्व का विपरीत है सम्यक्त्व, कषाय का विपरीत है अकषाय, वितराग पूर्ण, और असंयम से उल्टा है संयम, इन गुणों को प्राप्त करता है। अब आठ नंबर, यहाँ पंद्रह नंबर के पृष्ठ पर देखते हैं, जस्सोदयेन जीवो अणुसमयं मरदि जीव दिवराओ तस्सोदयखयेन दु भव मरण विवज्जियो होई। जिस आयु कर्म के उदय से बेचारा जीव हो गया मोनी। अभी हमने 8 का पढ़ा ना, क्या कहा? बेचारा जीव, ऊपर बताए वराओ, वरा का कहते हैं गुजराती में, वरा का कहते नहीं, संस्कृत में शब्द वरा का, बेचारा, बेचारो, बिचारो के बेचारो, बिचारो, बिचारो, हिंदी में बेचारा कहते हैं और मराठी में ह्रस्व भी बिचारा, और यहाँ वरा का कहते हैं, वराओ, क्या कहते हैं? जिस आयु कर्म के उदय से बेचारा जीव कब मरता है? प्रति समय मरता और जीता है। उसी कर्म के उदय क्षय से वह जीव जन्म और मरण से रहित हो जाता है, क्योंकि आयु कर्म का उदय हर समय चल रहा है, जी रहा है, और वो कर्म जा भी रहा है तो मर भी रहा है। यहाँ तो हम मनुष्यायु का क्षय होकर देवायु का उदय हुआ तो हम कहेंगे वो मनुष्य में उसको मरा कहेंगे और देव में जन्मा कहेंगे। एक आयु का क्षय होकर दूसरे का उदय चालू होगा, पर यहाँ तो हर समय के जो निषेक है ना, नया नया एक खिर भी रहा है, नया का उदय भी हो रहा है, इसलिए मर भी रहा है और जी भी रहा है इस तरह से, क्योंकि प्रति समय कहने की क्या जरूरत थी उनको। 9 अंगो अंग शरीर इंद्रिय मनुष्या सजो गणिपत्ति जसोदयेन सिद्धो तन्नामखेण अशरीरो। जिस नाम कर्म के उदय से अंगोपांग शरीर इंद्रिय मन और उच्छ्वास के योग्य से नहीं के योग्य निष्पत्ति होती, निष्पत्ति ने रचना होती है, उसी नाम कर्म के क्षय से सिद्ध अशरीरी होते हैं। यानी जब तक नाम कर्म है उसका उदय है तो वो शरीरों की रचना होती रहेगी, और सिद्ध कैसे है तो नाम कर्म का पूर्णता क्षय हो चुका है। जैसे देखो शरीर के परमाणु भी संयोग केवली तक तो लेना भी चल रहा है, अयोग केवली में केवल खिरना चल रहा है, और वो भी अंतिम समय में सब खिर जाते हैं, अब जीव पूर्ण शुद्ध स्वरूप में विराजमान रहता है, तो उसे सिद्ध अशरीरी होते हैं। 10 उच्च उच्चतः उच्च नीच नीचुच्च नीच नीचम जसोदयेन भावो नीचुच्च विवज्जितो तस्। जिस गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्च 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 नीच 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 उच्च नीच व नीच नीच भाव भाव को प्राप्त होता है, भाव को लेना, यानी जीव के भावों की बातें कैसे होती है उसकी बात है, उसी गोत्र कर्म के क्षय से वह जीव नीच और ऊंच भावों से मुक्त होता है। यानी ये शुभ या अशुभ भाव भी है ना, ये तो हाँ वही लेना है उसमें, कैटेगरी है उच्च उच्च भाव ने मनुष्यों में जो कहेंगे ऊपर के, हाँ ऊपर के श्रेणी में ले सकते उसको, क्योंकि नीच कर्म का उदय तो 5वें गुण स्थान तक ही, जैसे तीरियन चौंके भी होता है, नीच गोत्र का है ना, तीरियन चौंके तो होता ही है 5वें गुण स्थान तक, किसी मनुष्यों के भी होता है, तो ये उसके भावों की बात है। उच्च उच्च ने उच्च अच्छे उच्च, जैसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म या सूल शब्द लगाते इस तरह से इसका अर्थ लेना, हाँ हाँ ये अति उच्च उच्च नीच, हाँ ये हो गए नारकी हो गए, यहाँ अलग से उनका बताया नहीं है, नहीं नहीं मनुष्यों में उच्च नीच दोनों होते हैं, पर देवों में उच्च ही हो गए, वीर्यंच में नीच ही होते हैं, उनमें उच्च नहीं होते ना ना, पर सारे नीच गोत्र वाले, उनके नीच गोत्र का ही उदय होता है, तो भी नीच गोत्र है। तीर्यंच और नारकी के नीच गोत्र है, देवों के उच्च गोत्र ही है। मनुष्यों में उच्च गोत्र वाले भी होते हैं और नीच गोत्र वाले भी होते हैं। हाँ, वो सब उच्च गोत्र वाले, देवगति के उच्च गोत्र। किसको? नीच नीच में अभी हर जीव के परिणामों की अपेक्षा लेना है ना, उसमें यानी उसके भाव कैसे हो रहे उसकी बात चल रही है। और गोत्र कर्म के क्षय से ऊंच और नीच भावों से मुक्त हो जाता है। अब 11 नंबर, वीर्यो वभोग भोगे दाने लाभे जजुदयो विघ्नम पंचविहलद्विजुत्तो तक्कम खया हवे सिद्धा। जिस अंतराय कर्म के उदय से जीव के वीर्य, उपभोग, भोग, दान और लाभ में विघ्न उत्पन्न होता है, उसी कर्म के क्षय से सिद्ध पंचविध लब्धि, इन्हें पांच प्रकार की लब्धि से संयुक्त होते हैं, क्षायिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, उसको कहते हैं, उसको पांच लब्धि भी कहते हैं, इनको क्षायिक लब्धि भी कहते हैं। 12 नंबर, जय मंगल भूदानम विमलानम नानदंसन मयानम तेलोक सेहराणम नमो सया सौव सिद्धानम। अब सिद्धों का वर्णन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो जग में मंगलभूत है, विमल है, ज्ञान दर्शनमय है और त्रैलोक्य के शेखर रूप है, ऐसे समस्त सिद्धों को मेरा सदा नमस्कार हो। पहले 8 कर्मों के क्षय से सिद्धों के कौन कौन से भाव क्या होते हैं वो बात बताई है, अब ऐसे सिद्धों को यहाँ नमस्कार करते हैं, क्योंकि यहाँ बंध के कारण की चर्चा हुई थी और ये कर्म के क्षय से क्या क्या हो जाता है सिद्धों में, वो भी बात बताई है। तो यहाँ गति मार्गणा की बात समाप्त करके इंद्रिय मार्गणा में अभी बताएंगे। 15 नंबर पर ये 8 नंबर का सूत्र है ना, उस सूत्र को पढ़ेंगे हम। इंद्रियाणुवादेण ए इंद्रिया बंधा, वि इंद्रिया बंधा, ती इंद्रिया बंधा, चतुर इंद्रिया बंधा, इन्हें बंधक कौन कौन है इंद्रिय मार्गणा के अनुसार, वो बात बता रहे हैं। इंद्रिय मार्गणा के अनुसार, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा में जीवों के 5 भेद होते हैं, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। गति मार्गणा में क्या बताया हमने कि मनुष्य गति तक बताया, बंधक भी है और अबंधक भी है। अब सिद्ध गति को भी बताया, सिद्ध गति, हाँ, क्योंकि जहाँ बंधक के कारण नहीं है कोई, वो जो बंधक भी नहीं है और जो बंधे हुए जो कर्म थे उसका क्षय हो चुका, ऐसे सिद्धों का भी वर्णन कर दिया। क्योंकि मार्गणाओं में तो हम केवल संसारी पर घटित करते हैं, यहाँ हर मार्गणा में सिद्धों पर भी घटित करेंगे। जैसे पंचेंद्रिय तक कहेंगे, फिर अनिंद्रिय जो सिद्ध भगवान है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये सारो 5 इंद्रियों वाले बंधक है कि नहीं है? है भी नहीं भी, बरोबर। अयोग केवली पंचेंद्रिय जीव है, तो पंचेंद्रियों में 13वें गुणस्थान तक के बंधक कहेंगे, 14वें वाले भी उनके पंचेंद्रिय, वो उदय तो है ना, पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय है, उनको जीवों को हम पंचेंद्रिय जीव कहेंगे। इसलिए उसमें इसमें छोड़ा पंचेंद्रिय, जैसे मनुष्य गति को अलग बताया था, मनुष्य गति में बंधक भी है और अबंधक भी है। अभी जिस जिस मार्गणा में 14वां गुणस्थान आता है और अन्य भी गुणस्थान आते हैं, उनको कहेंगे बंधक है भी और नहीं भी है। समझ में आते हैं बात? जैसे अनाहारक कहने से 14वें गुणस्थान वाले अनाहारक है, विग्रह गति वाले भी अनाहारक है, तो वहां कहेंगे अनाहारकों में बंधक भी है और बंधक भी है। आहारकों में क्या कहेंगे? आहारक में कोई अबंधक बंधक होते हैं क्या? आहार का अर्थ तो शरीर के परमाणु ले रहे, तो कर्म तो ले ही रहे ना उसी समय, यानी आहारक सारे बंधक ही हो गए ना। हाँ, अभी वो आएगी चर्चा क्रम से, हम ऐसे बीच वाला एक प्रश्न कोई पूछेंगे ना आपको, नहीं यहाँ से पढ़ते देखो, ये हमने उसका अर्थ फिर देखो देखो, इंद्रिय मार्गणा के अनुसार एकेंद्रिय जीव बंधक है, द्विंद्रिय जीव बंधक है, त्रिंद्रिय जीव बंधक है और चतुरिंद्रिय जीव बंधक है। कारण क्या, बंधक क्यों है? क्योंकि उनके बंधक का कारण है मौजूद, इसलिए वो बंधक है। क्योंकि उक्त जीवों में कर्म बंधक के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इनके अन्वय को छोड़कर व्यतिरेक का अभाव है, अर्थात उन जीवों में बंध के कारणों का सद्भाव ही पाया जाता है, असद्भाव नहीं। ये अन्वय व्यतिरेक का अर्थ क्या है? हमने क्या देखा था कि पहले में भी बंध के कारणभूत भाव जब घटित किए थे तो अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है कि जहाँ ये मिथ्या तो वगैरह भाव है वहाँ बंध भी है, और जहाँ ये भाव नहीं है वहाँ बंध भी नहीं है, यानी अन्वय से और व्यतिरेक से दोनों से सिद्ध हुआ था। क्योंकि इन जनरल बात बताते तो सिद्धों को ये भाव नहीं है तो उनमें बंध भी नहीं है, अयोगी के ये भाव नहीं है तो बंध भी नहीं, ऐसे सिद्ध हुआ था। अभी हम किस मार्गणा की बात चल रहे हैं, एक इंद्रिय से चौइंद्रिय तक कहेंगे, तो इनमें तो ये सब बंध के कारणभूत भाव है तो बंध भी है, पर उनमें ऐसा नहीं कह सकते कि व्यतिरेक से, यानी बंध के भाव भी नहीं है और बंध भी नहीं, ऐसा उनमें नहीं कह सकते। इसलिए कहते अन्वय को छोड़कर व्यतिरेक का अभाव है। अन्वय व्यतिरेक हमने वो अग्नि और धुएं पर सिद्ध किया था, है ना, अग्नि है यानी धुआं है तो अग्नि है, और अग्नि के अभाव में धुएं का भी अभाव है। यहाँ बंध के कारणों के सद्भाव में बंध भी है और बंध के कारण के अभाव में बंध नहीं है, ये तो इन जनरल घटित हुआ था सामान्य से जब कहता। अब ये एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक ये बात घटित नहीं होगी, एक बात घटित होगी, कौन सी, जहां ये बंध के कारण है वहां बंध भी है, एक बात घटित होती है। पर वो चतुरिंद्रिय तक के जीवों में हम ऐसा नहीं कहते कि जिनमें ये कारण नहीं वो वहां बंध नहीं है, ये उनमें नहीं कह सकते, बंध है ही। हाँ, जैसे अभी अन्वय है व्यतिरेक नहीं है, वो व्यतिरेक भी नहीं, ऐसा कहा पंचेंद्रियों में घटित कर सकते हम, पंचेंद्रिय के होते हुए बंध के कारण नहीं है तो बंध भी नहीं है, ये अयोगी में सिद्ध करेंगे हम। यहाँ तो इन शब्दों का अर्थ समझना है, कुछ नहीं, नए शब्द आते हैं तो कंफ्यूजन, अन्वय व्यतिरेक क्या होता है, तो उसको हमने उदाहरण के द्वारा देखा। फिर से पढ़ते इसको, क्योंकि उक्त जीवों में यानी एकेंद्रिय से चतुरेंद्र तक की बात है, कर्म बंध के कारणभूत ऐसे जो मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, इनके अन्वय को छोड़कर व्यतिरेक का अभाव है, अर्थात उन जीवों में बंध के कारणों का सद्भाव ही पाया जाता है, असद्भाव नहीं, यानी इनमें बंध हमेशा होगा ही, उन्हें चारों ही कारण मौजूद है। तो एकेंद्रियों में कषाय होते होंगे कि नहीं होते होंगे? हमें तो उनको देख कर क्यों प्रसन्नता होती है, क्या कैसी हरियाली है, कैसे पानी बह रहा है, कैसे अरे वो भी जीव बंधक है, बंध कर रहे हैं। 16 नंबर के पुरुष पर आते अभी, अब पंचेंद्रियों में देखो अभी, यानी कैसे सोचना है हमको, जिसमें बंध भी है और अबंध भी है, तो हमें वो सभी मार्ग यानी 14 गुणस्थानों का तो सामान्य स्वरूप मालूम है, अभी 14 में योग भी नहीं, कोई भी बंध का कारण नहीं रहा, तो पंचेंद्रिया बंधावी अत्थि अबंधावी अत्थि, पंचेंद्रिय जीव बंधक भी है अबंधक भी है। उन्होंने बताने से पहले हमको ये सोचना चाहिए, वो तो बताएंगे स्पष्टीकरण क्यों ऐसा ना अयोगी, नहीं 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 अयोगी है ना, सिद्ध तो पंचेंद्रिय ने, सिद्धों को पंचेंद्रिय नहीं कहेंगे, अनिंद्रिय में लेंगे, पंचेंद्रियों में सिद्ध होते ही नहीं है, मार्गणा इंद्रिय मार्गणा चल रही है। हाँ, तो नहीं उसमें सिद्ध ले ही नहीं सकते, पंचेंद्रियों में कौन लेंगे जो अबंधक है, अयोग केवली बस। इधर उधर चुक नहीं जाना। हाँ, सिद्धों को नहीं, सिद्धों की बात अनिंद्रियों में लेंगे, बिना इंद्रिय वाले, बिना शरीर वाले, उनकी बात अलग। हाँ, त्रस में होगा, पंचेंद्रियों में होगा। हाँ, ये सारे मार्गणों में इस तरह से हम सोच सकते हैं। देखो, पंचेंद्रिय जीव बंधक भी है, अबंधक भी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली तक के जीव तो बंधक ही है, ही लगाया, क्योंकि उनमें बंधक के कारणभूत मिथ्यात्वादी पाए जाते हैं, यानी जहाँ जिस गुणस्थान में जो कारण है वो पाए जाते हैं। सहयोगी में एक योग ही है, परंतु वहाँ वो योग के कारण बंध भी कहेंगे, किंतु अयोगी केवली, वो अयोगी हुए, वो अयोगी चाहिए, अ करना उसको, आ नहीं। सेकंड लाइन में अयोगी केवली का ना, उसके बदले अयोगी केवली अबंधक ही है, क्योंकि उनमें मिथ्यात्वादी सभी बंध के कारणों का अभाव है। कल हमने देखा था उनको शैलेश्य कहते हैं, शैलेश्य, वो 18,000 शील के भेद हमने देखे थे, याद है कि भूल गए? हाँ, उसमें आया था ना अभी, छठी पुस्तक में, अचेतन स्त्री, चेतन स्त्री, उसके सब। हाँ हाँ, तो यहाँ तक कहते मिथ्यात्वादी सभी बंध के कारणों का अभाव है, इसलिए पंचेंद्रिय जीव बंधक भी है, अबंधक भी है, ऐसा कहा गया है। शंकाकार पूछते हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से समस्त प्रमेय, प्रमेय ने गेय, आगे लिखा है, अर्थात गेय पदार्थों को देख लिया है, यानी जाना है, और जो करण अर्थात इंद्रियों के व्यापार से रहित है, इंद्रियों को भी करण कहते हैं, करण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परिणामों को भी करण कहते हैं, जो तीन करण परिणाम, करण लब्धि, साधन को भी करण कहते हैं, अंतःकरण, अंदर वाला करण यानी इंद्रिय जो है, इंद्रिय को भी करण कहते हैं। तो यहाँ ऊपर बात आई थी ना, शंकाकार पूछते हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से समस्त प्रमेय अर्थात गेय पदार्थ देख लिया है, पदार्थों को देख लिया है, और जो करण अर्थात इंद्रियों के व्यापार से रहित है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते, इसलिए उसके व्यापार से रहित है कहा, ऐसे सहयोगी और अयोगी केवलियों को पंचेंद्रिय कैसे कह सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं? यदि हम प्राणों की चर्चा करेंगे, द्रव्य प्राण, आपको शायद याद होगा, तो प्राणों में हम केवली भगवान को पांच इंद्रिय प्राण नहीं लेते उसमें, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा जानते हैं, इंद्रियों के द्वारा जान नहीं रहे, इसलिए प्राण की जब चर्चा आती है तो उनके वो पांच इंद्रिय प्राण नहीं ऐसा कहेंगे, केवल ज्ञान के द्वारा डायरेक्ट जानते हैं। परंतु अभी ये हमारी कौन सी मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा हम उसको पंचेंद्रिय कहेंगे, जीव समास की अपेक्षा भी संगी पंचेंद्रिय कहेंगे। तो ये प्रश्न वही पूछ रहे हैं कि उनको आप पंचेंद्रिय क्यों कह रहे हैं, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उनमें पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय विद्यमान है, और वो 14वें के अंत तक विद्यमान रहता है, अंत में जाकर उसका क्षय हो जाता है, अतः उसकी अपेक्षा से उन्हें पंचेंद्रिय कहा गया है। अब कहते अनिंद्रिया अबंधा, ये सिद्धों की बात यहाँ आ गई। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा सभी संसारी जीवों को पांच इंद्रिय वालों में भैया अलग अलग विभाजित किया और सिद्धों को अनिंद्रिय कह दिया, क्योंकि निरंजन सिद्धों में समस्त बंध का अभाव है। निरंजन, अंजन से रहित है, कालिमा से रहित है, समस्त बंध का अभाव है, चूंकि ने कारण के निरामय अर्थात निर्विकार जीवों में बंध का कोई कारण नहीं रहता। निरामय, एक्चुअली निरामय सिद्धों को कहते, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो शरीर संबंधी कोई रोग भी नहीं है, इसलिए निरामय कहते। निर्विकार तो है ही है, उनमें बंध का कोई कारण ही नहीं है। जो कारण बताए थे, यहाँ योग भी या अयोगी को भी नहीं है, तो सिद्धों में वो भी कुछ भी नहीं रहा। अब हमने गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा देखे, दो मार्गणा। तीसरी मार्गणा का नाम है काय मार्गणा, काय मार्गणा की अपेक्षा से कितने भेद होते ब्रह्मा? काय मार्गणा की अपेक्षा? षटकाय कौन से? एक इंद्रिय तो इंद्रिय मार्गणा हुए, शांति रखो। हाँ बरोबर, जरा याद करो। हाँ हाँ, त्रस और कौन से? हाँ, उसमें पांच स्थावर को अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। इस तरह से छह नाम है काय वाले, जुदी जुदी काया है उनकी। हाल में आई ना बात? तो अभी यहाँ हम देखते हैं काय मार्गणा के अनुसार, अभी इसमें से कौन से बंधक है उसकी बात चली। अब जैसे इंद्रियों में जैसे हमने लगाया था पंचेंद्रिय में, ऐसे त्रस में लगाना पड़ेगा। अरिहंता भगवान त्रस है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जरा क्योंकि बराबर भय लगता है ना उनको त्रस के। सब जगह ऐसा लगता है। अरे अरिहंता भगवान को त्रस, क्योंकि त्रस किसको हमें लगता है? वो कीड़े मकोड़े चल रहे वो त्रस है। अरिहंता भगवान को त्रस कैसे कहना? उनको त्रस नाम कर्म का उदय है। इसलिए देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। कायानुवादेन पुढ़वी काया बंधा, आउ काया बंधा, तेउ काया बंधा, वाऊ काया बंधा, वनफदी काया बंधा। ये सारे बंधक है, इसे बताया। काय मार्गणा के अनुसार पृथ्वी कायिक जीव बंधक है, अपकायिक, अपकायिक हुए वो अपकायिक जीव बंधक है, तेजस कायिक जीव बंधक है। अग्नि कायिक कहो या तेजस कायिक एक बात है, अपकायिक कहो या जल कायिक एक ही बात है। वायु कायिक जीव बंधक है और वनस्पति कायिक जीव बंधक है। यह सूत्र सुगम है, 17 नंबर पेज पर आते हैं। अब त्रस कायिकों में बताएंगे। तस काया बंधावी अथि अबंधावी अथि, वो अथि बराबर लिखो। त्रस कायिक जीव बंधक भी है अबंधक भी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोगी केवली तक के त्रस कायिक जीवों में बंध के कारणभूत मिथ्यात्वादी पाए जाते हैं, किंतु अयोगी केवली में वे बंध के कारण नहीं पाए जाते। यानी जिस गुणस्थान में जितने बंध के कारण है वो सारे पहले त्रस के गुणस्थान पहले से अयोगी तक सारे है, बाकी ये जो अन्य जो स्थावर का है वो तो पहले गुणस्थान वाले हैं सब, और वहां चारों ही कारण विद्यमान है उसके। अब कहते अकाया बंधा अबंधा, अकाया अबंधा। त्रसकायिक में दोनों लिए, बंधक भी और अबंधक भी। अब अकायिक, अकायिक है ना सिद्ध भगवान, वो अपकायिक नहीं अकायिक। अकायिक जीव अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। समझ में आई ना बात? ये तो सब आसान बातें हैं। अब जोगाणुवादेन मन जोगी वची जोगी काय जोगिनो बंधा, योग मार्गानुसार मनोयोगी वचन योगी और काय योगी बंधक है। यह सूत्र भी सुगम है। अभी उसके भेद भी करो तो वही बात है। चार मनोयोगी अलग अलग कहो, चार वचन योगी अलग अलग कहो, और काय योगी में कारमान का योग हो या कोई अन्य, तो ये सारे बंध वाले है ही, उसमें बंध है। यह सूत्र भी सुगम है। अब कहते अजोगी अबंधा, अयोगी जीव अबंधक है। अब अयोगी कहने से वो अयोग केवली भी आ गए और सिद्ध भगवान भी अयोगी में गिनेंगे अभी। शंका, योग किसे कहते हैं? क्योंकि योगी अयोगी किस आधार पर कह रहे हैं, तो योग किसे कहते हैं? तो उसका समाधान, मन वचन और काय संबंधी पुद्गलों के अवलंबन से आलंबन से जो जीव प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वही योग है। उस संबंधी पुद्गल ने उसकी जो वर्गणा है। अब आप कहेंगे यहाँ कर्म कहाँ लिया, मन वचन और काय लिया, तो काय में तो वो कारमान काय भी ले सकते हैं, तेजस काय भी ले सकते हैं ना, उसके भी वर्गणा का आलंबन ले ही रहा है। दूसरी भाषा में कर्म और नौकर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है उन ये भाव योग से ही होते हैं, भाव योग ही लेना सर्वत्र। अभी ये अपने ही थे चौथे दिन, और ये जो परिस्पंदन है वो भी वो उस भाव योग के कारण ही होता है। हाँ वो द्रव्य योग, परंतु वो आठ प्रदेशों पर कभी वो घूमना नहीं होता, फिर भी वहाँ योग है और वहाँ बंध भी है, यही बात सिद्ध होती है। यानी उसकी चर्चा बारहवीं पुस्तक में है ज्यादा, कि वहाँ भले वो अन्य प्रदेशों की तरह घूम नहीं रहे हैं, परंतु वहाँ बंध है, क्योंकि इस पर भाव योग से ही बंध है। और द्रव्य योग क्यों हो रहा है, तो भाव योग के कारण ही द्रव्य योग हो रहा है। पर वो तो आठ में नहीं भी हो तो भी ये होना जरूरी नहीं है कर्म बंध के कारण। शंका, यदि ऐसा है तो अयोगी जीव नहीं होते, क्या कहा? अयोगी को जीव नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्रिया सहित जीव द्रव्य को अक्रिय मानने में विरोध आता है, समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि आठों कर्मों के क्षीण हो जाने पर जो ऊर्ध्वगमनोपलंबी क्रिया होती, वो भी क्रिया कही, केवल प्रदेशों का हलन चलन ही क्रिया नहीं है। सिद्ध जीव भी अयोगी के बाद जब ऊर्ध्वगमन करके ऊपर सिद्धालय में विराजमान होते, एक समय में पहुंच जाते हैं, वो भी उनकी क्रिया कहने में आती है। और उसमें जरूरी नहीं कि प्रदेशों का हलन चल, तो होता ही नहीं है वहां पर। ये मैंने लिख के रखा पीछे, आठों कर्मों के क्षीण हो जाने पर ऊर्ध्वगमनोपलंबी क्रिया होती है, उसके पहले नहीं। संसार अवस्था में विग्रह गति में ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव से नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि वहां कर्म का सद्भाव है और जहां की जो आयु बंदी है उस दिशा में उसका गमन भी होता है। तो कहते वो ऊर्ध्वगमनोपलंबी क्रिया होती है, वह जीव की स्वाभाविक क्रिया है, उसको भी क्रिया कहने में आता है। कुछ कार्य हुआ ना, यहाँ गमन रूप कार्य हुआ, पर वो प्रदेशों के हलन चलन रूप गमन रूप कार्य नहीं हुआ, प्रदेश स्थित है सारे ही सारे, निष्कंप अवस्था अयोगी में ही हो गई है, क्योंकि वह कर्मोदय के बिना प्रवृत्त होती है, वहां कोई कर्म का उदय नहीं है, बिना कर्मोदय से ये क्रिया हो गई है, अन्यत्र कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। ये विग्रह गति में भी छह दिशाओं में जो गमन हो रहा है वो कर्मोदय उसमें निमित्त है। कौन से अभी हो गए तभी नहीं गए, अयोगी के अंतर्मूर्त के पश्चात, क्योंकि अयोगी में अभी चार कर्म बाकी है, तभी ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है, बाद में वेदनी आयु नाम गोत्र बाकी थे ना। स्वस्थित प्रदेश को न छोड़ते हुए अथवा छोड़कर जो जीव द्रव्य का अपने अवयवों द्वारा परिस्पंद होता है वह अयोग है। नीचे क्या लिखा है? इति जोगो पाठा है। अन्य किसी उसमें योग कहा है करना, अवयव द्वारा परिस्पंद होता है वो अयोग है या योग है? अरे नहीं, जीव के जो हाँ ये वाक्य उसमें जरा वाक्य पढ़ो तो फिर पढ़ना।
प्रदेश को न छोड़ते हुए अथवा छोड़कर जो जीव द्रव्य का अपने अवयव द्वारा परिस्पंदन होता है वह अयोग है, क्योंकि वह कर्म क्षय से उत्पन्न होता है।
यानी ये परिस्पंदन ने जाना ऐसा लिया अर्थ, यानी वो वही का वही हलचल रूप परिस्पंदन नहीं लिया है। जीव द्रव्य से सावयव ही परिपंदो, ये कुछ वाक्य अटपटा है। स्वस्थित प्रदेश को न छोड़ते हुए, नहीं प्राकृत में वैसा ही है, सठिद देशम अचंडीय छंडितता, यहाँ तो प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी वो प्रदेश को छोड़ते हुए क्या नहीं छोड़ते हुए, वहां जीवदवस्य सावयवी परिफंदो अजोगुणाम, ये दो तीन वाक्यों का वो मेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उसमें अन्यत्र उसको योग पाठ बताया, योग के बदले योग बताया। और फिर तस्य कम्मक्षयत्ता दो, कर्म क्षय से उत्पन्न होता है, उसमें तो अयोगी कहेंगे। या इसे ले सकते हैं हम, जो ऊपर जो गमन क्रिया हुई है वो अपने अवयवों द्वारा ऊपर गया है, वो कर्म क्षय से हो गया है, इतना उनको बताना होगा शायद। अतः सक्रिय होते हुए भी, अब ये शरीर ही निकाल लेना, वहां सिद्ध जीव अयोगी होते ऐसा चाहिए। आगे सिद्ध शब्द आगे चला गया है, यहाँ का क्या वाक्य है, शरीरी जीव अयोगी सिद्ध होते हैं, ऐसा लिखना है। सक्रिय होते हुए भी शरीरी शब्द निकाल दो, सिद्ध जीव अयोगी सिद्ध अयोगी होते हैं, सिद्ध जीव अयोगी होते हैं, क्योंकि ऐसा ले सकते हैं, सक्रिय होते हुए भी जीव अयोगी सिद्ध होते ऐसा भी हो सकता है, परंतु सिद्ध जीव अयोगी होते ऐसा लेना ज्यादा ठीक लगता है। क्या कैसे कैसा रुकना, स्वस्थित प्रदेश को न छोड़ते हुए जो जीव द्रव्य का अपने अवयवों द्वारा परिस्पंदन होता है वह अयोग है। यानी सक्रिय, यानी वो क्रिया जो है ना ऊर्ध्वगमन की क्रिया, वो भले चालू है परंतु वहां अयोग सिद्ध करना है, ऐसा लेना। सक्रिय होते हुए भी सिद्ध जीव अयोगी होते हैं, क्योंकि सिद्ध जो पहले समय में सक्रिय है, यहां से ऊर्ध्वगमन करके सात आयु ऊपर गए हैं, वो जो क्रिया है वो स्वाभाविक क्रिया है, कर्म के क्षय में उत्पन्न हुई वो क्रिया है, क्योंकि अभी उसका कारण बताते हैं, उनको अयोगी कहा क्योंकि उनके उनके यानी सिद्धों के जीव प्रदेशों के तप्तायमान जल प्रदेशों के सदृश, यानी जब हम पानी रखते गैस पर चूल्हे पर अग्नि पर तपाने को, तो क्या होता है, उबलता पानी यानी ऊपर नीचे होते हैं उसके, जो पानी ऊपर नीचे ऐसा होता है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसके सदृश उद्वर्तन और परिवर्तन रूप क्रिया का अभाव है। अयोगी क्या कहा, यानी वो तो प्रदेशों का जो घूमना जिसको हम कहेंगे उद्वर्तन परिवर्तन, ऊपर नीचे चला जाना, प्रदेशों का क्रम नहीं चेंज हो रहा है, फिर वो प्रदेश ऊपर नीचे हो रहे हैं, उद्वर्तन और परिवर्तन उसका अभाव है, वो अयोगी है। वो हाँ, वो उद्वर्तन परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर ये प्रदेश ऐसे के ऐसे ऊर्ध्वगमन करके ऊपर चले गए, इस तरह से। इसीलिए अयोगियों को अबंधक कहा है। अब 16 नंबर को पढ़ेंगे। ये जो योग मार्गणा हो गई, अभी वेद मार्गणा, तो वेद मार्गणा के कौन से भेद है, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, और फिर अपगत वेदी है। अपगत वेदी में कोई बंधक है कि नहीं है? नहीं है। नौवे गुण स्थान में अपगत वेदी हो गया तो तेरहवे तक तो बंधक है और बाकी में बाद में हम अबंधक कहेंगे। अभव्य की यहाँ कहाँ, इसमें अभव्य की चर्चा कहाँ लेनी है? वो भव्य मार्गणा में आएगा और अभव्य सारे बंधक ही कहेंगे हम। अभी देखो वेद मार्गणा की बात है। वेदानुवादेन इत्थि वेदा बंधा, पुरुष वेदा बंधा, नौस वेदा बंधा। वेद मार्गणा के अनुसार स्त्री वेदी जीव बंधक है, पुरुष वेदी जीव बंधक है और नपुसक वेदी जीव बंधक है। क्योंकि ये एक से नौवे गुण स्थान तक के तो सब आ गए ना, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुसक वेदी। जब तक वेद का उदय है तब कोई ना कोई वेद वाला होगा, तो वहां तो बंध सबको है। यह सूत्र सुगम है। अब कहते अवगत वेदा बंधावी अथि अबंधावी अथि। अपगत वेदी बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि अपगत वेदी में वो नौवे के दूसरे भाग से लेकर नौवा है, दसवा है, ग्यारहवा है, बारहवा है, तेरहवा है, वो तो बंधक है। चौदहवे वाला अबंधक कहेंगे हम, क्योंकि कषाय वो योग सहित तथा कषाय वो योग रहित जीवों में अपगत वेदत्व पाया जाता है। इसका अर्थ समझ में है ना? विशेषार्थ नौवे के अवेद भाग से गुणस्थान यद्यपि अपगत वेदियों के है तो भी उनमें दसवें गुणस्थान तक कषाय व तेरहवें गुणस्थान तक के योग का सद्भाव होने से तक के नहीं तक चाहिए, दसवें गुणस्थान तक कषाय व तेरहवें गुणस्थान तक योग का सद्भाव होने से कर्मबंध होता ही है। और इस प्रकार इन गुणस्थानों के जीव अपगत वेदी होने पर भी बंधक है। समझ में आई ना बात? इसका अर्थ चौदहवें गुणस्थान में बंध का अंतिम कारण योग भी नहीं रहता और इस कारण ये चौदहवें शब्द डालो, यहाँ चौदहवें गुणस्थान के अपगत वेदी जीव अबंधक है। ब्रह्मा यहाँ गुणस्थान के पहले चौदहवें गुणस्थान के ऐसे शब्द डाले, चौदह कारण उसके बाद कारण चौदहवें गुणस्थान के कारण है लिखा हुआ लास्ट लाइन, कारण के बाद चौदहवें शब्द डालो, चौदहवें गुणस्थान के अपगत वेदी जीव अबंधक है। अब कहते सिद्धा अबंधा, सिद्ध अबंधक है। शंका, जिस कारण अवगत वेदी जीव सिद्धों में भी है, वो सिद्धों में हुआ है, ध बराबर करना, सिद्धों में भी है, अतएव पूर्वोक्त सूत्र में अपगत वेद की प्ररूपना से ही सिद्धों की भी प्ररूपना हो जाती है, इसलिए सिद्धों की पृथक प्ररूपना निष्फल क्यों नहीं हो जाती? ये हमें भी प्रश्न होता है ना, अयोगी कहने से वो अयोग केवली भी है, सिद्ध भी अयोगी रहते हैं। ऐसे अपगत वेदी कहने से नवे गुणस्थान के चौदहवें तक तो अपगत वेदी है ही है, सिद्ध भी अपगत वेदी है, तो उसमें सिद्ध इंक्लूड हो गए, तो इनको अलग से सूत्र क्यों कहा? ये उनका प्रश्न है। इसका समाधान, ऐसा कहने पर कहते हैं सिद्धों की पृथक प्ररूपना, यानी वो जुदी अलग से प्ररूपना बताई ना, उसका कथन यानी स्पेशल सूत्र बनाकर किया, वो निष्फल नहीं है, क्योंकि अपगत वेद पने की अपेक्षा बंधक और अबंधक ये दोनों राशियां ग्रहण की गई है, जिससे सिद्धों में भी बंधक और अबंधक विषयक संदेह होने लगता है। क्या कहना चाहते हैं? जब हमने कहा अपगत वेद में बंधक भी और अबंधक भी है, तो अपगत वेद में अगर सिद्ध इंक्लूड होते हैं तो उसमें भी बंधक अबंधक है क्या? तो कहते नहीं है, यानी सिद्ध अपगत वेदी होने पर अबंधक ही है ये कहना था, इसलिए अलग से सूत्र बना है। ख्याल में आई ना? समझ में आती है बात? अयोगी में ऐसा नहीं था, चौदहवें गुणस्थान वाले अयोगी हैं और अबंधक हैं, सिद्ध भी अयोगी और अबंधक है। समझ में आई बात? ऐसा या नहीं कह सकते हम? यहाँ अपगत वेदी में बंधक भी है और अबंधक भी है, और तो सिद्ध भी अपगत वेदी है, तो उनमें बंधक लेना क्या अबंधक? इसलिए वो सिद्ध अपगत वेदी होने पर भी अबंधक ही है, ये स्पेशली बताना था, इसलिए यहाँ सूत्र डाला उन्होंने। देखो कितना ये बुद्धि का काम है ना, नहीं तो हम भी उसमें आ गए, परंतु उसमें स्पेसिफिक बताना चाहिए, वो है अपगत वेदी, उनमें बंध नहीं हो सकता। यही ये शंकाकार ने इसीलिए शंका पूछी थी। देखो सेकंड लाइन में समाधान के फिर पढ़ते, क्योंकि अपगत वेद पने की अपेक्षा बंधक और अबंधक के दोनों राशियां ग्रहण की गई है, यानी उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जिससे सिद्धों में भी बंधक और अबंधक विषयक संदेह होने लगता है। इसी संदेह को दूर करने के लिए सिद्ध अबंधक है ऐसी पृथक प्ररूपणा की गई है, यानी वो स्पेशल फिर दोबारा बता दिया। शेष सिद्धार्थ सुगम है। कुछ प्रश्न पूछा शोभा? हाँ
नहीं, मेरा कोई प्रश्न
नहीं। नहीं, अच्छा हाँ, क्या दूर है ना मोबाइल से, आपका फोन दूर रहता है, आवाज सुनाई नहीं देती। अभी हम आगे की सूत्र पढ़ेंगे। ये वेद मार्गणा हो गई, अब कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा के भेद कौन से हैं? क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई, वो तो बंधक है ही है। तो अकषाई भी बंधक होते हैं कि नहीं होते है? नहीं, तेरहवें गुणस्थान वाले, तेरहवें वाले, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, तीनों ही अकषाय है ना, वो बंधक है। और चौदहवें वाले अकषाय और बंधक है। समझ में आई की बात? अपगत वेद में कैसे लिया हमने? अबंधक है, पर ग्यारह बारह तेरह वाले अकषाय होते हुए भी बंधक है, क्योंकि कषाय नहीं परंतु योग है उनके। 19 पेज पर अभी कषाय मार्गणा की बात पढ़ेंगे हम। देखो कषायाणु वादेण कोध कसाई, मान कसाई, माय कसाई, लोभ कसाई बंधा। कषाय मार्गणानुसार क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोभ कषाई जीव बंधक है, क्योंकि कषाय इटसेल्फ बंध का कारण है ही है ना, परंतु कषाय मिटने पर भी योग जब तक है तब तक बंधक कहेंगे। अकषाय होने पर भी ग्यारहवे बारहवे तेरहवे वालों को बंधक कहेंगे हम। यह सूत्र सुगम है। अब 20 नंबर का, अकषायी बंधा भी अथि अबंधा भी अथि। अकषायी जीव बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक के सयोगी जीवों में, वो सारे योग वाले ना, कषाय बिना के है परंतु योग है, तथा चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जीवों में अकषायपना पाया जाता है, यानी वो जिसको 11, 12, 13, 14 सारे अकषायी है परंतु उसमें से 11, 12, 13 ये बंधक है और चौदहवें वाले अबंधक है। ये आसान है ना, उसमें तो बहुत कठिन कुछ नहीं है। अब सिद्ध भी अकषायी है तो सिद्धों में भी ये सवाल हो सकता है, जैसे अन्य अकषायों में दो भेद किए, बंधक और अबंधक, परंतु सिद्धों की स्पेशल इसलिए दोबारा बात बताएं कि सिद्धा बंधा, जैसे ऊपर हमने अवेदी में सिद्धों को अलग से बताया था, यहाँ पर भी अलग से बता रहे, इसलिए सिद्ध अबंधक है। 20 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। इस सूत्र के पृथक रचे जाने का कारण पहले के समान प्ररूपित करना चाहिए। जैसे हमने अपगत वेदी में देखा कि सिद्ध अपगत वेदी है तो उसका सूत्र अलग से क्यों बनाया, ऐसे यहाँ सिद्ध अकषायी है तो उसका सूत्र अलग क्यों बनाया, क्योंकि अकषायियों में कुछ बंधक है कुछ अबंधक है। सिद्ध भी अकषायी है परंतु वो अबंधक ही है। ये कषाय मार्गणा हो गई। अब ज्ञान मार्गणा की बात करेंगे। ज्ञान मार्गणा में तीन तो मिथ्या ज्ञान है, है? और पांच सम्यक ज्ञान है, उसकी अपेक्षा बात करेंगे। तो उनमें से कौन से पहले, वो पढ़ने के पहले हम देखते ना, तीन मिथ्या ज्ञान वाले तो बंधक है ही है, तो सम्यक ज्ञान वाले जो है अन्य कौन से है, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, वो बंधक है कि अबंधक है? बंधक है, क्योंकि बारहवें गुणस्थान तक तो बंधक है ही सारे। केवल ज्ञानी बंधक है कि अबंधक है? हाँ, अभी दोनों है। तो केवल ज्ञानी में दोनों कहेंगे, फिर सिद्धों को अलग बताना पड़ेगा, जैसे अकषाय में बताया। ये पढ़ने के पहले हम तैयार हो गए तो अब पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, नानानुवादेन मदि अन्नानी सुद अन्नानी विभंगणानी आभिनिभोय नानी सुद नानी ओधिनानी मनपज्जव नानी बंधा। ज्ञान मार्गणा के अनुसार मति अज्ञानी, मत्य ज्ञानी यानी मति अज्ञानी, श्रुता ज्ञानी यानी श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी यानी कु अवधि वाला, आभिनिबोधिक ज्ञानी यानी मति ज्ञानी जिसको हम सुमति ज्ञान कहते हैं, श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी बंधक हैं। यह सूत्र सुगम है। अब कहते केवल नाणी बंधावी अथि अबंधावी अथि, केवल ज्ञानी बंधक भी है चाहिए, भी नहीं लगा डाला उन्होंने, और अबंधक भी है, एक भी डालो बीच में, केवल ज्ञानी बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि वी डाला ना दो बार उन्होंने। अब फिर दोबारा कहते सिद्धा अबंधा, क्योंकि वो भी केवल ज्ञानी है तो उसमें कोई संदेह न रहे, इसलिए कहते सिद्ध अबंधक हैं। अब शंकाकार पूछते हैं, यहां अबंधक ही है ऐसा अन्य विकल्प का निषेधात्मक एव पद का प्रयोग क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं किया क्योंकि सूत्र की पृथक रचना मात्र से ही वही अर्थ जान लिया जाता है। क्योंकि केवल ज्ञानी के दो बात बताए, बंधक भी है और अबंधक भी है, और सिद्ध के लिए अलग सूत्र बनाया, उससे लिए क्या जाहिर होता है, वो अबंधक ही है, इसलिए ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। शेष सूत्रार्थ सुगम है। संजमानुवादेन असंजदा बंधा, संजदा संजदा बंधा। देखो क्या कहते हैं, अभी संयम मार्गणा की बात चलेगी। तो संयम मार्गणा के भेद कौन से होते हैं? एक असंयम, पहले से चार गुणस्थान तक के असंयम ही कहेंगे, पांचवें गुणस्थान को कहेंगे संयमासंयम, छठे से चौदहवें तक संयम कहेंगे। तो संयम ही कहने से फिर उसमें बंधक भी और अबंधक भी है, ख्याल में है ना बात, इसलिए इसको दो ही ले। पहले संयमानुवादेन असंजदा बंधा, संजदा संजदा बंधा। संयम मार्गणानुसार असंयत बंधक है और संयता संयत बंधक है। संजदा बंधा भी अति अबंधा भी अति, संयत बंधक भी है और अबंधक भी है, ये दोनों सूत्र सुगम है। समझ में आई ना बात, क्योंकि संयत कहने से छठे से चौदहवें गुणस्थान तक के सभी आ गए, इसलिए उसमें बंधक भी और अबंधक भी कहेंगे। अब 21 पृष्ठ पर आते हैं। नेव संजदा नेव असंजदा नेव संजदा संजदा अबंधा। यहां सिद्ध ऐसा नहीं कहा, सिद्धों के लिए क्या कहा, संयम मार्गणा की अपेक्षा न संयत न असंयत, एक कॉमन लेना संयत के बाद, कि न संयत न असंयत न संयता संयत, ऐसे सिद्ध जीव अबंधक है। देखो सिद्धों को संयम ही नहीं कहते कभी, क्यों नहीं कहते उसकी बात बता रहे। विषयों में दो प्रकार के असंयम अर्थात इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम रूप से क्या कहते हैं, संयम के भी दो प्रकार बताते हैं, कौन से, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ऐसे असंयम में भी उसी की बात बताएंगे, इंद्रिय का असंयम और प्राणी असंयम, यानी प्राणी असंयम में छह प्रकार बताते हैं, सावर और तस जीवों की वो हिंसा से विरत नहीं हो उसको असंयम कहेंगे, उससे विरत हो उसको संयम ही कहेंगे। इंद्रिय संयम में भी 6 प्रकार बताएंगे, 5 इंद्रिय और मन संबंधी। फिर से पढ़ते, विषयों में 2 प्रकार के असंयम अर्थात इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम रूप से प्रवृत्ति न होने के कारण सिद्ध असंयत नहीं है, यानी वो असंयमी नहीं है, इसे असंयत नहीं है। अब कहते सिद्ध संयत भी नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति पूर्वक उनके संयम का अभाव है। क्या कहना है, संयमियों के क्या है, यानी वो तो प्रवृत्ति पूर्वक संयम कर रहे, यानी उनके उपयोगी इंद्रिय और मन में नहीं लग रहा है, या जब उनके जो इनकी हिंसा टालने रूप प्रयत्न है ऐसे तो उनके है ही नहीं है, इसलिए वैसी प्रवृत्ति नहीं है, यानी प्रवृत्ति वाला जो संयम है उसका अभाव है। इस कारण संयम और असंयम इन दोनों के संयोग से उत्पन्न संयमासंयम का भी सिद्धों के अभाव है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। कहीं कहीं उसके चारित्र में भी आता है ना, चारित्र के अर्थ में संयम लेते हैं तो उनके चारित्र भी नहीं ऐसा कहते, ये उसका अर्थ होता है। अब ये संयम मार्गना हो गई। दंशनानुवादेन, देखो दर्शन मार्गना जो है उसकी अपेक्षा से भेद कैसे करेंगे, कोई चक्षु दर्शनी है, कोई अचक्षु दर्शनी है, कोई अवधि दर्शनी है और कोई केवल दर्शनी, 4 भेद हो गए। तो दंशनानुवादेन चक्षु दंशनी अचक्षु दंशनी ओधि दंशनी बंधा, दर्शन मार्गनानुसार चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी बंधक हैं। ये 12वें गुणस्थान तक पाए जाएंगे। केवल दंशनी बंधा भी अति अबंधा भी अति, केवल दर्शनी बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि केवल दर्शनी कहने से 13वें 14वें गुणस्थान वाले आ गए, तो उसमें बंधक भी है अबंधक भी, सिद्ध भी केवल दर्शनी है, उनमें सूत्र अलग बनाएंगे, तो केवल दर्शनी बंधक भी है और अबंधक भी है। सिद्धा अबंधा, सिद्ध अबंधक है, ये सब सूत्र सुगम है, सूत्रा हुआ सूत्र सुगम है। अब लेशा मार्गना की अपेक्षा बात करेंगे, 6 लेशा होती है, तो ऐसे कौन सी लेशा है जिसमें अबंधक होते हैं, शुक्ल लेशा कहाँ तक है, 13वें तक है, वहां बंद भी है, तो मैंने क्या पूछा था, ऐसी कौन सी लेशा है जहां बंद नहीं है, तो जहां लेशा है वहां बंद है ही, अलेश हो जाएंगे तब बंद नहीं है कहीं, नहीं शुक्ल लेशा कहाँ तक है, 13वें तक है और वो सारे बंधक है, अबंधक कहाँ है 13वें शुक्ल लेशा में, अबंधक कहाँ है 14वें वाले को, लेशा नहीं है क्योंकि ना कषाय है ना योग है, ख्याल में आई बात। फिर से देखो यहाँ पढ़ेंगे अभी हम, लेसानुवादेन किन्नलेसिया नीललेसिया काउलेसिया तेउलेसिया पम्मलेसिया सुक्कलेसिया बंधा, सारों को बंधक में ले लिया। लेशा मार्गनानुसार कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, तेजो लेशा वाले, पद्म लेशा वाले और शुक्ल लेशा वाले बंधक है, यह सूत्र सुगम है। अलेशिया अबंधा, लेशा रहित जीव अबंधक है, अभी लेशा रहित में अयोग भी आ गए और सिद्ध भी आ गए, अभी इसलिए यहां सिद्ध अबंधक है कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अलेशों में अगर बंधक और अबंधक दोनों होते तो सिद्धों का सूत्र अलग कहते, जैसे अयोगी और सिद्धों को एक साथ ले लिया, 14वें वाले भी अयोगी सिद्ध भी अयोगी, तो अबंधक ले लिया था, ऐसे यहां पर भी लेना, 14वें वाले भी अलेश है और सिद्ध भी अलेश है। शंकर, सिद्ध अबंधक है ऐसा पृथक निर्देश क्यों नहीं किया, है ना, उसका समा नहीं किया, क्योंकि लेशा रही जीवों में बंधक और अबंधक ऐसे दो विकल्प नहीं होते हैं। दो पॉसिबिलिटी है क्या? लेशा नहीं है, कहाँ नहीं है? चौदहवें में नहीं है, उनके बंध भी नहीं है, और सिद्धों में भी नहीं है, उनके भी बंध नहीं है। तो सिद्धों का सूत्र अलग कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर से, लेशा रही जीवों में बंधक और अबंधक ऐसे दो विकल्प न होने से कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता, अर्थात अलेश्य अबंधक है। इतना कहने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि लेशा रहित अयोगी जिन भी अबंधक है और सिद्ध भी अबंधक है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। पॉसिबिलिटीज दो होती तो अलग से बताते सिद्धों को। अब यहाँ आगे देखते भव्य मार्गणा। तो भव्य में कोई होगे क्या बंधक अबंधक? कौन होगे? हाँ, कहाँ पर? अयोगी हो, वो भी भव्य है ना, अभी सिद्ध कहाँ बन चुके हैं, वो भव्य कहेंगे उनको भी। देखो, भवियानुवादेन अभव सिद्धिया बंधा, भव सिद्धिया बंधावी अथि अबंधावी अथि, है ना? भव्य मार्गनानुसार अभव्य सिद्धि सिद्धिक जीव बंधक है, वो अभव्य है, उनके पहला गुणस्थान ही रहेगा, उनके बंध है ही है। भव्य सिद्धिक जीव बंधक भी है और अबंधक भी है। जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक उनको भव्य होने योग्य कहेंगे, है ना? नैव भव सिद्धिया नैव अभव सिद्धिया अबंधा, न भव्य सिद्धिक न अभव्य सिद्धिक, ऐसे सिद्ध जीव अबंधक है। क्योंकि जो सिद्ध हो चुके ना उनको भव्य कैसे कहेंगे? होने योग्य कब तक कहेंगे? जब तक नहीं हुए तब तक होने योग्य कहेंगे। अब सिद्ध हो चुके, अब उनको भव्य नहीं कहेंगे, सिद्ध कहेंगे। पहले उनको भव्य सिद्धिक कह रहे थे, अब उनको सिद्ध कहेंगे। अभव्य भी वो हो ही नहीं सकते, इसलिए उनको क्या कहेंगे? वो ना भव्य सिद्धिक है ना अभव्य सिद्धिक है, और वो कैसे? तो अबंधक है। ये सब सूत्रार्थ सुगम है। अब सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा भेद कौन से हो गए हैं? कोई सम्यक दृष्टि है और कोई नहीं है। जो नहीं है उनके कोई मिथ्या तो गुणस्थान वाले हो सकते हैं, कोई साधन हो सकते हैं, कोई तीसरा मिश्र हो सकता है। और जो सम्यक दृष्टि है उनमें कोई औपशमिक हो सकते हैं, कोई क्षौपशमिक हो सकते हैं, कोई क्षायिक हो सकते हैं। अभी बाकी तो सारे बंधक हो गए, क्षायिक में दो विकल्प पड़ेंगे, क्योंकि अयोगी वाले तो क्षायिक है ही है। ख्याल में आई बात? अब यहाँ देखेंगे। सम्मतानुवादेन मिच्छादिट्ठी बंधा शासन सम्मादिट्ठी बंधा सम्मा मिच्छादिट्ठी बंधा। सम्यक तो मार्गणानुसार मिथ्या दृष्टि बंधक है, सासाधन सम्य दृष्टि बंधक है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि बंधक है, क्योंकि उक्त जीव समस्त कर्माश्रवों से संयुक्त होते हैं। समस्त कर्माश्रवों से संयुक्त है, वो मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्यात्व और असंयम कषाय योग है, बाकी दूसरे तीसरे वालों को मिथ्या तो भले नहीं है परंतु कषाय है, अविर असंयम है, कषाय है, योग है। सम्मादिट्ठी बंधा भी अति अबंधा भी अति, यहाँ सामान्य से सम्यक दृष्टि इतना ही कह दिया, इसलिए कहते सम्यक दृष्टि बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि चौथे से तेरहवें गुणस्थान तक के आश्रव सहित और चौदहवें गुणस्थानवर्ती आश्रव रहित ऐसे दोनों प्रकार के जीवों में सम्यक दर्शन पाया जाता है, यानी वो भी सम्यक दृष्टि है। यहाँ तो सम्यक के तीन भेद नहीं बताए, केवल सम्यक दृष्टि इतना कह दिया। सिद्धा अबंधा, सिद्ध अबंधक है। अगर हम वो सम्यक दृष्टि में एक भेद करेंगे, औपशमिक सम्यक दृष्टि बंधक है क्या अबंधक है? बंधक है। क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि अबंधक है क्या बंधक है? बंधक है। क्षायिक सम्यक दृष्टि बंधक है क्या अबंधक है? दोनों है। फिर उसमें सिद्धों का अलग से कहेंगे, इसलिए सिद्ध को अलग से बताया। सिद्धा बंधा, सिद्ध बंधक है, यह सूत्र सुगम है। स्पेशल क्यों कहा? क्योंकि समय दृष्टियों में भी कोई बंधक है कोई अबंधक है चौदहवें वाले, इसलिए सिद्धों की बात अलग से बताई। अब कहते सन्नियाणु वादे न सन्नी बंधा असन्नी बंधा। संगी मार्गणानुसार संगी बंधक है असंगी बंधक है। देखो आपको ये प्रश्न पड़ेगा कि चौदहवें वाले भी संगी पंचेंद्रिय है, जीव समास में वो संगी पंचेंद्रिय है, परंतु संगी मार्गणा में उनको संगी नहीं कहते, ये विशेषता है। संगी कब तक कहेंगे? जब तक मन के द्वारा जानने का कार्य करते हैं तब उनको संगी कहेंगे। तेरहवें चौदहवें वालों को संगी असंगी से पार कहेंगे। मन से जानते हैं क्या वो, कि केवल ज्ञान से जानते हैं? क्या उसको बंधक कहेंगे परंतु उसको संगी नहीं कहेंगे? फिर से देखो संगी हमने ऊपर सूत्र पढ़ा था, संगी मार्गणानुसार संगी बंधक है असंगी बंधक है। संगी कहने से बारहवा गुणस्थान तक ही लेना है इसमें। अब दूसरी इसलिए सूत्र नया बसाए कि नैव सन्नी नैव असन्नी बंधा भी अत्थि अबंधा भी अत्थि, न संगी न असंगी ऐसे केवल ज्ञानी जिन बंधक भी है और अबंधक भी है। देखो उनको संगी असंगी क्यों नहीं कहना? उनका नौ इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम नष्ट हो गया है। नौ इंद्रिय ने मन संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है, ने मन के द्वारा जानने उघाड़ रूप ज्ञान है, अब वो क्षय हो चुका, इसलिए केवल ज्ञानी जीव संगी नहीं है। तथा उनके मात्र इंद्रियों के अवलंबन से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वे केवल ज्ञानी जीव असंगी नहीं है। अतः वे न संगी और न असंगी होकर बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि तेरहवें और चौदहवें दोनों संगी असंगी से पार है, पर उसमें तेरहवें वाले बंधक है चौदहवें वाले अबंधक है, इसलिए उनमें बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि उनको संयोगी अवस्था में बंध का कारण योग पाया जाता है और अयोगी अवस्था में अबंध का कारण योग का अभाव रहता है। इस प्रकार के केवल ज्ञानी जिन बंधक भी होते हैं और अबंधक भी होते हैं। अब जो संगी असंगी ने ऐसे सिद्ध भी है तो वो अबंधक ही, इसलिए उसका सूत्र स्पेशल कहेंगे। सिद्धा अबंधा सिद्ध अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। 24 पृष्ठ पर आते हैं। आहारणु वादेन आहारा बंधा, आहार मार्गणानुसार आहारक जीव बंधक है। आहारक कहना किसको? जो शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण करते उनको आहारक कहेंगे। अनाहारक कब कहलाएंगे? विग्रह गति में जब मोड़ सहित जाते हैं तब, मोड़ के पहले पहले अनाहारक होते हैं। कर्म का ग्रहण चल रहा है वहां पर भी, और अनाहारक कब होते हैं? वो समुद्घात में भी। और अनाहारक सारे अयोगी अनाहारक है, योग रुक गया तो शरीर के परमाणु का ग्रहण भी रुक गया उनका। कहेंगे हम अनाहारक में जब विग्रह गति वाले और संयोग वाले हैं उनको बंधक कहेंगे, और अनाहारक में अयोगी वालों को अबंधक कहेंगे, उसमें दोनों हो जाएंगे। अभी पढ़ेंगे उसकी बात। आहारक तो सारे बंधक है तो नक्की होता है ना, उसमें तो विचार करने की जरूरत नहीं, शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है वो कर्म भी बांध ही रहा है, इसलिए आहारक तो सारे बंधक है। अनाहारा बंधा भी अत्थी अबंधा भी अत्थी, अनाहारक जो बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि अनाहारक जो बंधक है वो पहला दूसरा चौथा और तेरहवा गुणस्थान, ये विग्रह गति में, और वो विग्रह गति में भी होता और तेरहवे में समुद्घात में, केवली समुद्घात में। पर अबंधक भी है वो कहाँ लेना? चौदहवा गुणस्थान। चौदहवें गुण स्थान में अनाहारक होते हुए अबंधक है। अब अनाहारक होते हुए बंधक अबंधक दोनों लिए, इसलिए सिद्धों का स्पेशल सूत्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनाहारक होते हुए अबंधक ही है, इसलिए कहते सिद्धा अबंधा, सिद्ध अबंधक है। ये सूत्र सुगम है। शंका, यह बंधक सत्वाधिकार पहले ही क्यों प्ररूपित किया गया है? बंधक सत्वाधिकार है, ने बंधकों की सत्ता कहाँ क्या है, ये क्यों पहले बताया? उसका समाधान, धर्मी के सद्भाव में ही धर्मों का चिंतन किया जाता है। धर्म यानी जिसके धर्म प्रकट है वो धर्मी कहेंगे, या द्रव्य को भी धर्मी कहेंगे और उसको उसके आधार से रहने वो धर्म कहेंगे, गुण कहेंगे। नहीं नहीं वो बात नहीं है, धर्मी यानी धर्म को धारण करने वाला धर्मी, द्रव्य को भी कहेंगे। द्रव्य और गुण के बारे में, गुण किसके आधार से, तो गुण द्रव्य के। तो कहते धर्मी के सद्भाव में ही धर्मों का चिंतन किया जाता है। इस न्याय के अनुसार बंधकों का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर पश्चात उनकी विशेष प्ररूपना करना योग्य है, यानी उसमें फिर वो किसको क्या कौन सा स्वामित्व वगैरह उसकी बात बताएंगे। इसलिए बंधकों की सत प्ररूपना, बंधकों की सत प्ररूपना का अर्थ होता है बंधक है कौन से गतियों में, कौन से मार्गणों में, कौन बंधक है कौन अवबंधक है, उसकी चर्चा पहले की। तो बंधकों की सत प्ररूपना पहले ही करना चाहिए। इस प्रकार अस्तित्व से सिद्ध हुए बंधकों के, अभी बंधकों का अस्तित्व सिद्ध कर दिया, अब उसमें ही वो सारे अनुयोग द्वार घटित करेंगे। बंधकों के 11 अनुयोगों द्वारा विशेष प्ररूपणार्थ आगे की ग्रंथ रचना हुई है। इस प्रकार बंधक सत प्ररूपणा समाप्त हुई। आगे की चर्चा कल से चलेगी। हाँ देखो, आपका प्रश्न है संगी, संगी पंचेंद्रिय किसको कहेंगे जीव समास में? सबको। हाँ, जीव समास में उनको हम संगी कहेंगे, संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, परंतु यहाँ संगी मार्गणा में 12वें तक ही संगी जीव कहेंगे। रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत। Thank you.